झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
ओम शांति। भट्टी के इस संध्याकालीन सत्र में हम तपस्या करने वाले ब्राह्मण बच्चों की सभा में आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। हम सभी राजू भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्नेह भरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजू भाई जी साकार मात पिता की पालना में पलने वाले पांडव सेना में महारथी बच्चे हैं। विशेष मुरली जो हम ब्राह्मणों की जीवन रेखा है, तो मुरलियों को तैयार करना, संकलित करना, एडिटिंग करना, मुख्यालय में होने वाली मुरली की सभी सेवाएं आदरणीय राजू भाई जी कर रहे हैं। और 40 वर्षों से भी अधिक समय से आप हमारी दादियों के अंग संग रहते हैं। विशेष शिव बाबा के यज्ञ की नियम मर्यादाएं, आचार संहिता तथा समय प्रति समय आने वाले डायरेक्शन, दादियों के पत्र जो पत्र पुष्प के नाम से सारे ब्राह्मण परिवार के पास पहुंचते हैं, ये सभी सेवाओं के आप मूल आधार हैं। विशेष दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहते आपने यज्ञ रक्षक का सुंदर पार्ट बजाया है। वर्तमान समय भी आप योग तपस्या भट्टियों के माध्यम से ब्राह्मण परिवार को योग निष्ठ बनाने की विशेष सेवा कर रहे हैं। देश विदेश ब्राह्मणों की स्व उन्नति के प्रोग्राम आपके द्वारा होते हैं। और अभी सबसे अनोखी बात है कि बाबा का जो रूरल डेवलपमेंट विंग है, गांव गांव की सेवा के लिए जो ग्राम विकास प्रभाग है, उसके आप अध्यक्ष है। भारत के हर गांव को गोकुल गांव बनाने के लिए आप दिन रात अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उसमें भी विशेष वर्तमान समय योगिक खेती, कृषि में भी योग के प्रयोग, ये जो विशेष सेवा आपके द्वारा गवर्नमेंट तक हो रही है, भारत सरकार तक हो रही है, इसके अनेकानेक प्रयोग चल रहे हैं। तो योगिक कृषि के माध्यम से अभी आप बेहद की सेवा कर रहे हैं। आपके दिल में सदा ये सुखद स्वप्न है कि गांवों से बना हुआ भारत फिर से स्वर्ग बने, सतयुग बने, और आप इस प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे कहे यज्ञ के एक आधार स्तंभ, विजयमाला के मणके राजू भाई जी से इस सत्र में हम एक सुंदर विषय पर प्रकाश पाएंगे कि डबल लाइट स्थिति द्वारा सेवा कैसे करें। हम सदा डबल लाइट रहे और हमारी स्थिति द्वारा सेवा हो। तो आदरणीय भ्राता जी के अनुभव युक्त विचार वरदानी वचन हम डबल लाइट स्थिति द्वारा सेवा इस विषय पर सुनेंगे। फिर एक बार भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आप अमूल्य रत्न हमको बांटेंगे।
ओम शांति। हम सभी बाबा के डबल लाइट बच्चे, डबल लाइट तो है ही ना कि बोझ है, वैसे भी आत्मिक स्वरूप जो है प्रकाश स्वरूप भी है और हल्का भी है। तो जब डबल लाइट स्वरूप स्थिति कहते हैं तो हम सबका जो संपूर्ण स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप, वो फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने आता है। वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप है और ब्राह्मण आत्माएं जब सब कुछ बाबा पर अर्पित करके डबल लाइट बन जाती हैं तो फरिश्ता बन जाती है और उस फरिश्ते स्वरूप से बाबा भी विश्व कल्याण की सेवा कराना चाहता है। स्थूल में तो सब स्थानों पर साकार में पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन दूर दराज विश्व के कोने कोने तक सेवा का एक सबसे अच्छा माध्यम हमारी डबल लाइट स्थिति है। वो डबल लाइट स्थिति सेवा करते कार्य व्यवहार में आते कैसे बने, आज मेरा एक चिंतन चल रहा था कि बाबा तो करण करावनहार है, सब कुछ करा रहा है, उसका इतना बड़ा बेहद का कार्य चल रहा है, फिर हम सब पर कौन सा बोझ है, हम तो ही डबल लाइट, करण करावनहार बाबा है, कराने वाला वो है, हमसे सिर्फ बाबा कहता हाथ आगे करो मैं करा लूंगा। जब सब कुछ करता कराता है तो बोझ किस चीज का। लेकिन बोझ के आज कुछ कारण मुझे दिखाई दिए। आत्मा जो इतनी डबल लाइट है, पांच कारण आज मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका स्वरूप भले छोटा होता है लेकिन उसको सोच करके, उसका वर्णन करके, उसका चिंतन करके हम उसको बहुत भारी बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं और उस बड़े स्वरूप को देख करके ही ऐसे लगता है मैं तो बहुत भारी हूं। बंधन और बोझ, ये दोनों चीजें ही हमें उड़ती कला में उड़ने नहीं देती। इसलिए मन के अंदर उठने वाले तनाव, उनके कारणों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है मन के अंदर तो बोझ बन जाता है। सारी दुनिया तनाव में जी रही है, छोटी छोटी बातें आज कितनी प्रॉब्लम का रूप है। बाबा ने हम सबको तनाव मुक्त जीवन का वरदान दिया है। ब्राह्मण जीवन में जब सब जवाबदारियां बाबा ने ले ली, फिर तनाव क्यों, टेंशन क्यों? कुछ कारण दिखाई देते हैं। जब हमारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, किसी से बहुत कुछ हम चाहनाएं रखते हैं और वो चाहनाएं जब हमारी पूर्ण नहीं हो पाती तो तनाव पैदा होता है। जिनको हम अपना समझते हैं जिनसे विशेष स्नेह होता है, अधिकार से उनको कोई कार्य कहते हैं और वो नहीं कर पाते या नहीं करते हैं तो तनाव पैदा होता है। अगर हमारे निमित्त हमारे से ठीक व्यवहार नहीं करते, उनकी भाषा में शुद्धता नहीं है, तो भी तनाव पैदा होता है। हमारी स्वतंत्रता का अगर हनन होता है, हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में अगर कोई विघ्न रूप बनता है, रुकावट डालता है, तो तनाव पैदा होता है। ब्राह्मण जीवन की बात मैं कर रहा हूं। दुनिया के अंदर तो तनाव के कई कारण हैं, लौकिक जवाबदारियां हैं, बिजनेस है, नौकरी है, कई प्रकार की उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तनाव के कारण अलग हैं। लेकिन एक अलौकिक परिवार के अंदर जब सब कुछ बाबा ने हमारी जवाबदारियां ले ली, उसके बाद तनाव क्यों, टेंशन क्यों, भारीपन क्यों, उसके कारण क्या है? कोई न कोई हम सबकी इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं, वो कामनाएं जब पूर्ण नहीं हो पाती तो चिंतन चलता है बहुत फास्ट गति से, और वो चिंतन हमारी नींद को पिटा देता है, हमारी खुशी को गायब कर देता है, उमंग उत्साह को खत्म कर देता है। इसलिए इस पहले कारण को हम सब ध्यान दें। अगर हमें डबल लाइट स्थिति बनानी है तो इस अलौकिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, नेकी का दरिया में डाल, जो बाबा ने कार्य कराना है, जो जिस कार्य के निमित्त बनाया है। कल एक मुरली में अध्ययन कर रहा था, बाबा ने चार्ज शब्द के चार अर्थ बताए। चार्ज, एक तरफ हम कोई इंचार्ज बन जाते हैं किसी चीज के, तो हम समझते हैं मैं इंचार्ज हूं, मैं बड़ा हूं, इंचार्ज के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारियां लग जाती हैं। अगर इंचार्ज होकर के, मुख्य होकर के आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, अपने संगठन को ठीक रीति से नहीं चला पाते, तो बाबा कहता है उनके ऊपर चार्ज लगती है। चार्ज लगती, समझते हैं ना कोई फाइन लगता है, चार्ज लगती है। तो एक तरफ इंचार्ज है, कोई ड्यूटी मिली उसकी चार्ज मिल गई, दूसरी तरफ अगर उसको हमने संपूर्ण निभा नहीं पाया तो हमारे ऊपर चार्ज लग गई। और अगर इंचार्ज की बैटरी खुद चार्ज नहीं है तो दूसरे की बैटरी चार्ज कैसे करेगा? इसलिए जो निमित्त हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं अपने दैवी परिवार को, ईश्वरीय परिवार को संभालने की, आगे बढ़ाने की, वो इस शब्द को बहुत अंडरलाइन करके चले, नहीं तो कहीं न कहीं बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। और विशेष सेवाओं में हम निमित्त नहीं बन सकते, इसलिए जो ड्यूटी मिली है, जिस कार्य के बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, उसको यथार्थ रीति से करने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को रोज चार्ज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातें हमारी स्थिति को डगमग कर देती हैं, और फिर धर्मराज के चार्ज से बचने के लिए हमें बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो डबल लाइट स्थिति में सबसे बड़ी रुकावट पहली आती है तनाव की, टेंशन की, किसी भी प्रकार का मन में भारीपन। और दूसरी एक बात जो मुझे दिखाई दी, वो कहीं न कहीं विशेष लगाव सेवाओं से, अपनी विशेषताओं से, अपने स्थान से, किसी न किसी प्रकार के लगाव में आत्माएं अभी तक भी डालियों को पकड़ के बैठी हैं। बाबा कहते हैं, बड़ी रमणीक कहानी सुनाते हैं, सुना होगा बाबा की मुरली में, कहते हैं कि कुछ तोते उड़ते हुए झाड़ पर बैठ गए और बैठ करके बार बार आवाज कर रहे थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। एक राहगीर को आया, ये तोते क्यों चिल्ला रहे, इनको किसने बांधा है, देखूं तो जब नजदीक आकर के देखा तो उन्होंने अपनी ही पंजे से उस डाली को जोर से पकड़ा हुआ था और डाली को पकड़ करके फिर कह रहे थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो राहगीर ने कहा, अरे भाई तेरे को छुड़ाएगा कौन, तुम छोड़ो तो छूट जाओगे, डाली पकड़ी तो तुमने ही है, कोई बांधा तो है ही नहीं। तो आजकल हम सभी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के हदों की डालियां पकड़ करके बैठ गए और अगर उन डालियों को छोड़ेंगे नहीं तो कभी भी डबल लाइट बन करके हम सेवा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा चाहता है बच्चे बेहद में आकर के विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने। मानसान की डाली है, किसी स्थान के विशेष आकर्षण की डाली है, किसी देहधारी से विशेष लगाव प्रभाव की डाली है, बहुत सारी सूक्ष्म डालियां हैं जो किसी न किसी तरह से हमने अपने ही संस्कारों की पंजे से उसको पकड़ करके रख लिया है। चेक करें, सचमुच में उड़ता पंछी एक सेकंड में बाबा बुलाए और मैं उड़ूं, कोई भी रस्सी, कोई भी बंधन, कोई भी बोझ मेरे उड़ने में रुकावट न डाले, ऐसी स्थिति बनी है। चेक करना, इतना अच्छा माहौल मिला है, इतनी अच्छी तपस्या कर रहे हो पांडव भवन में, ये बहुत बड़ा भाग्य है और ये फरिश्तों की दुनिया है। इस समय लगता होगा फाग है, चारों तरफ से बादल हैं घिरे हुए, शायद सूक्ष्म वतन का दृश्य साकार में आप अनुभव कर रहे हैं। साकार में फरिश्ता स्थिति क्या है, आप यहाँ चलते फिरते एकदम मन का मुख का मौन लेकर के अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही तो होंगे सूक्ष्म वतन के बादल, लाइट का कारी तन। तो इस साकार में भी हम अव्यक्त वतन का अनुभव करें, उसके लिए चेक करो, कहीं भी देह में, संबंध में, सेवाओं में, स्थानों में, व्यक्तियों, किसी में भी मेरा लगाव तो नहीं है, बुद्धि बार बार उधर खींचती तो नहीं है। कई बार किसी आत्माओं की विशेषताएं भी खींचती हैं। बाबा हमें दो बातें कहते हैं बंधनों की, बंधन बनने की। एक, जब किसी आत्मा पर विशेष आकर्षित हो जाते हैं, वही अच्छा है, सेवा वही अच्छी है, स्थान वही अच्छा है, तो प्रभावित होने से भी एक लगाव बन जाता है, बंध जाती आत्मा। और अगर किसी से घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, किनारा करने की दिल हो, बात नहीं करना, सामने आ जाए तो मूड खराब हो जाए, तो भी उससे हिसाब किताब बंधन बनता है। इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन बाबा देता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अगर किसी से विशेष दोस्ती कर ली तो भी खींचेगा, और किसी से अगर दुश्मनी रख ली तो जब बैठेंगे योग में तो वही याद आएगा, वैसा है वैसा है वैसा है। सचमुच अगर उड़ती कला में उड़ना है तो सब अच्छे हैं, सब बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर बैलेंस है न्यारे और प्यारेपन का। बाबा ने यही सिखाया, हमारी दादियों ने हमें यही सिखाया, उन्होंने जो इस जीवन में सबके बीच में रहते, इतनी सेवाएं करते, अपनी कर्मातीत स्थिति बनाई, इस स्थान पर आए हैं। मैं दीदी मनमोहिनी की बात सुनाता हूं। ये स्थान हमारी दीदी और दादी की तपस्या का विशेष स्थान है और दीदी मनमोहिनी देखा है जिन्होंने, कोई है ऐसे बैठे हैं दीदी मनमोहिनी को, सत्यनारायण भाई है, दो तीन चार हैं। आज जुलाई मास चल रहा है इसलिए थोड़ी बातें सुना देता हूँ। जुलाई मास दीदी का मास है, 28 जुलाई 1983 में दीदी अव्यक्त हुई थी। दीदी मनमोहिनी की बात कर रहा हूँ। इतनी जवाबदारियां बाबा ने दीदी को, पूरे यज्ञ की जवाबदारियां सौंपी है। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में दीदी पहले दिल्ली की सेवा कर रही थी, दिल्ली क्षेत्र से सेवाएं संभालती थी, लेकिन जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने दीदी को मधुबन में रखा। दीदी का कमरा वही जो यहाँ पर ऑफिस के आगे है। सब जवाबदारियां थी, जैसे बाबा ने किया दीदी ने खूब बहुत उसको कॉपी किया। जितने पत्र आते थे बाबा जैसे जवाब देते थे, दीदी ने जवाबदारी संभाली, सब पत्रों का मुझे जवाब देना है। जहां से भी कोई ने बुलाया, जहां आना जाना करना, दीदी जाएंगे। ईश्वरी नियम और मर्यादाओं में इतनी पक्की, जरा भी कोई कुछ भी हो जाए उल्लंघन नहीं होने देना, न खुद करना न दूसरे को करने देना। लास्ट में एक दो महीने से बिल्कुल उपराम, हर शब्द में यही था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सबसे न्यारी हो गई, सबकी प्यारी थी, सब बहुत प्रिय थी सबकी। लॉ एंड लॉ का बहुत सुंदर बैलेंस था। लॉफुल इतनी थी जो हंसाना बहलाना पिकनिक कराना खेल कूद कराना बहुत प्यार देती थी, लेकिन लॉफुल ऐसी थी कि अगर कोई एक भी कोई इधर उधर मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो फिर दीदी के सामने ठहर नहीं सकता था। प्यार से बुलाती थी, छोड़ती नहीं थी। कोई भी कंप्लेन अगर हम लोगों की कोई ने कर दी, मान लो ईर्ष्या के कारण भी कर दी, कंप्लेन गई उसको कहेंगे तुम इधर बैठो, और जिसकी कंप्लेन किया उसको बुलाओ, उसी समय बुला लो, 5 मिनट भी लेट नहीं करना। घंटी बजाते थे, घंटी रखते थे साथ में, फिर पर भाई होता कहते बुला के ले आओ। अच्छा आप बताओ क्या कंप्लेन है। कभी भी दीदी ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। इसने सुना दिया उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं। इसी से वातावरण में थोड़ी नेगेटिविटी फैलती है। उसी समय अगर कुछ बात है, क्यों कही है, क्यों बात आई है, क्यों कंप्लेन हुई, कुछ तो होगा, ऐसे कह करके उसे पूछती थी। और फिर उसमें अगर कोई ईर्ष्या द्वेष कोई ऐसी उल्टी सुल्टी रिपोर्ट सुनाई हुई हो तो उसी समय एक दूसरे से सॉरी करा करके, एक दूसरे को गले मिला करके, एक दूसरे को टोली खिला करके मुख में जाओ, अभी आगे के लिए कोई कंप्लेन नहीं करना। इसके कारण इतना वातावरण में एक पॉजिटिविटी थी, कोई भी प्रकार का नेगेटिव वातावरण था ही नहीं। ये लॉफुल थी। प्यार देने में तो इतनी हम लोग अगर कोई स्थूल कार्य करते थे श्रीमत अनुसार, क्योंकि यहाँ पर नौकर नहीं थे मधुबन में, और नौकर नहीं थे तो सारे कार्य मधुबन को वालों को ही करना, और भाइयों को ही करना है। बहने तो बहुत बुजुर्ग थी, छोटी थी, थोड़ी थी, तो जितनी स्थूल सेवाएं थी कार्य में, क्योंकि हाल की सफाई अगर करनी है, कमरों की सफाई करनी है, पानी गर्म करना है, ये रनिंग वाटर नहीं, स्टीम वाटर नहीं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, बिजली भी इतनी नहीं थी। धोबी घाट भी हम लोग मैनुअल ऐसे ही बट्टी चढ़ाते थे और सुबह छटका लगाते थे। लेकिन अगर कोई भी कार्य किया तो उसका रिटर्न बहुत जबरदस्त था। बहुत प्यार से कहती थी सब, चलो सेवा, ये सेवा है। और उसी समय कुछ न कुछ ऐसी चीज बनवाएंगी, हलवा बनवाएंगी, कोई ऐसी चीज बनाई, सबको बुला करके बहुत प्यार से खिलाएंगे, और खाओ डबल खाओ। पालना देने की एक बहुत अच्छी विधि थी। कार्य व्यवहार करते पारिवारिक जो फीलिंग थी, परिवार की भावना थी, उसे कभी थकावट या ये नहीं लगता था ये काम मैं क्यों करूं। सब इतनी सेवाएं कराई, मैं समझता हूं दीदी के समय ओम शांति भवन लास्ट बना, उसके बाद हम लोगों ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। उसके पहले जितनी मधुबन की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सब आप चारों तरफ देखेंगे, सब मधुबन निवासियों की डिजाइन है। मधुबन निवासियों ने सब पत्थर लगाए हैं, उठाए हैं, कोई मजदूर मिस्त्री बाहर के नहीं थे। दादी दीदी खड़ी हो जाती थी, चलो चलो चलो, वहीं पर चाय पकौड़ा मिलेगा सबको। सेवाएं कराई लेकिन प्यार दिया, पालना दी, और पालना देते हुए बहुत लाइट रखा, कोई को भारी नहीं होने दिया। संगठन में अगर भारीपन हो जाए, एक भी व्यक्ति भारीपन हो जाए, भारी हो जाए, तो सेवाओं में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आवश्यक है सबके मन की बातों को समझा जाए, उसकी गहराई में जाएं, उसकी विचारों को सुने समझे, फिर कोई निर्णय लें। ये दीदी दादी ने करके दिखाया। इतनी बड़ी जवाबदारियां, इतनी सेवाएं, इतना विस्तार, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी ने एक संकल्प किया था, मुझे याद है, जो साकार ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उसे मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। विदेश सेवाएं शुरू कराई बाबा के अव्यक्त होने के बाद 71 में। विदेश सेवाओं को संभालने के लिए दादी जानकी को तैयार किया बड़ी हिम्मत से, क्योंकि दादी कहती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, दादी मुझे क्यों भेजती हो, पूना में थी, नहीं तुमको जाना है। 74 में दादी को विदेश भेजा, मैं 71 में आ गया था। मैंने देखा कि इतना प्यार से यज्ञ को चलाया, संभाला, बाबा के अव्यक्त होने के बाद किसी को ये महसूस होने नहीं दिया कि बाबा नहीं है। इतनी पालना, इतना स्नेह दे करके, इतना एक सबको लेकर के, परखने की शक्ति तो इतनी तेज थी, पता नहीं कौन सा वरदान मिला था, सामने व्यक्ति आ जाए उसके तीनों कालों को परख लेना, ये व्यक्ति है कैसा। हम लोगों को तो ऐसे परख के, जितने डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं अभी सब आपके सामने नहीं आते हैं, सबको आप नहीं जानते हैं, लेकिन जितने मुख्य सेवाएं यज्ञ की हैं वो सब पिल्लर्स जो हैं वो उनको दीदी ने परख करके निकाला। सामने बोल देती थी ये बालक, ऐसे बोलती थी ये बालक यज्ञ के काम का है, खुद नहीं बात करती, दादी तुम इसको देखो, इससे बात करो, देख करके बोल देती थी। हम लोगों को तो ऐसे देख करके बोल दिया, दादी को बोला दादी इस बालक से बात करो, मैं छोटा था 15-16 साल का, इससे बात करो, ये यहां रह सकता है। दादी मेरे से जब इंटरव्यू लिया ना तो मैंने कहा दादी, जब बताया अपने लौकिक की बातें, दादी कहती दीदी की नजर तुम्हारे पर कैसे पड़ गई, तुमको तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं इकलौता बेटा, तीन के बीच में एक बच्चा, उसके बीच में तीनों की प्रॉपर्टी, और छोटा भी था, आयु में भी छोटा, ज्ञान युग इतना तो कुछ था नहीं, भले परिवार में ज्ञान था, लेकिन दीदी की जो नजर पड़ी उस नजर में से निहाल हो गए, समर्पित हो गए। और ऐसे ही मैंने देखा कि इतनी ये डबल लाइट स्टेज की निशानियां मैं आपको बता रहा हूं, अगर सचमुच वो डबल लाइट है तो उसकी परखने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, फट से व्यक्ति को परख लेगा कैसा है। कभी अनुमान नहीं लगाया, कभी शक और शंका नहीं पैदा हुई। अगर मान लो कोई की कंप्लेन आ रही है, कोई बातें हो रही है, तो अनुमान से इधर उधर वर्णन नहीं किया, उसी व्यक्ति से डायरेक्ट पूछ लिया, इधर आओ तुम्हारे विषय में मैंने ऐसा सुना है, सुन रही हूं। इससे क्या होता था, एक वातावरण में बातें नहीं फैलती थी, उसी समय सुना, उसी समय निर्णय दिया। किसी एक भाई को ऐसे बुलाया इधर आओ, तो उस बहन से अकेले में क्या बात कर रहे थे, क्यों इतनी देर बैठे थे, एक बात बताऊं, बड़ी रमणीकता से कहते थे अगर तेरे को शादी करनी हो तो दीदी को बता देना, दीदी तेरी शादी करा देगी। मेरा कोई कुमार कुमारी छिप करके अकेले में कहीं बैठ करके बात कर रहा हो तो ऐसे नहीं दीदी ने सुन लिया और उसको हाँ हाँ देखेंगे, किसी के दूसरे की ड्यूटी लगा दी, इसकी इंक्वायरी करो, इसकी जांच करो, बेचारा उसके पीछे कोई लगा हुआ हो, नहीं, खुद आकर के पूछ लेते थे, बुला लेते थे। अब उसके बाद तो उसकी हिम्मत पड़ेगी बात करने, किसी से अपने आप सीख हो जाएगा सब। तो ऐसी एक पालना एक लॉफुल स्टेज और लॉफुल स्टेज का बैलेंस रख करके इतनी बड़े संगठन को दीदी दादी ने पाला चलाया, और सब कुछ करते हुए इतना डबल लाइट। दादी से कभी कोई पूछ देता था, दादी इतनी कुमारियां, इतनी बहनें, इतनी बड़ी संस्था बढ़ रही है, विस्तार हो रहा है, आपको नींद आती है, चिंता नहीं चलता? कहती थी, अरे मेरे थोड़ी है, किसके हैं? बाबा के हैं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो तकिया पर सिर रखती हूं और नींद आ जाती है, एक मिनट भी नहीं लगता मुझे सोने में, इतनी डबल लाइट थी। कभी भी नहीं देखा कि इनके ऊपर कोई टेंशन है, कोई बाढ़ ऐसा है, ये हुआ वो हुआ, बात हुई बात पूरी हो गई, बाबा बैठा है, बाबा जाने, मैं क्यों चिंता करूं, जिसका यज्ञ है, जिसके बच्चे हैं, वो अपने आप संभालेगा। तो डबल लाइट स्टेज के लिए इन आत्माओं ने बहुत बैलेंस रखा, न्यारे और प्यारेपन का, किसी के प्रभाव में नहीं आई, किसी से लगाव झुकाव में नहीं आई, और किसी से नफरत और घृणा नहीं की। कोई कैसी भी बातें उनके विषय में सुना के जाए, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला नहीं। यहां तो फट से दृष्टिकोण बदल जाता, उसके बारे में इसने सुनाया, बस उसके भावनाएं बदल गई, ये है ही ऐसे, ये ऐसा ही करती होगी, क्यों इसके बारे में बातें उठती हैं। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना और विश्वास करके ऐसा दृष्टिकोण बना लेना, ये बोझ का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ध्यान दें, कोई भी बातें होती हैं संगठन के बीच में, हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। तीसरी बात, कई ऐसे पुराने स्वभाव हैं, पुराने स्वभाव जिसको बाबा कई बार कहता है, कहते नेचर है मेरी, वो नेचर एक नेचुरल बनी हुई है, न चाहते हुए भी कई ऐसी बातें होती हैं संगठन के बीच में जो नेचर अपना काम करके जाती है। ईर्ष्या की नेचर है, नफरत की नेचर है, किसी की बात को कट करने की नेचर है, इधर की उधर लगाने की नेचर है, ये पुरानी नेचर, पुरानी आदत। जो पुरानी आदत कई बार बाबा कहता है, अगर इन आदतों को नहीं बदला तो अदालत में जाना पड़ेगा। हम अपनी आदतों पर ध्यान दें, जो आदतें हमारी नेचुरल चल रही हैं, क्या ये ब्राह्मण कुल के नियम और मर्यादा के अनुकूल हैं? कोई भी ऐसी आदत जो मुझे या दूसरों को दुख दे रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उस आदत को ही समाप्त करने की तपस्या करनी है। ऐसे आदतें सहज रीति से चेंज नहीं होती। वो तो एक बार जगदीश भाई ने बड़ी रमणीक क्लास कराई थी, आदतें अथवा पुराने संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ, ऐसे सुधरते नहीं है, उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, महसूस ही नहीं करता ये मेरी आदत है। किसी को ऐसा बोल दिया जो सदा के लिए उसकी बेचारे की दिल टूट गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया, वो नहीं महसूस कर रहा है कि मैंने इसको ऐसा कुछ बोला। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है, मेरी ऐसी कोई आदत, ऐसा कोई पुराना स्वभाव न हो जो किसी भी आत्मा को अंदर से दुखी करे, उसके दिल को तोड़ दे, नहीं तो बोझ बनता जाएगा, बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। बहुत छोटी छोटी अवज्ञाएं आत्मा को डबल लाइट बनने नहीं देती हैं, बहुत छोटी छोटी, अगर उनका हम गहराई से ध्यान दे करके परिवर्तन करने का लक्ष्य रखें, तो मुझे इन्हीं आदतों को तो समाप्त करना है, इसी के लिए तो मैं बाबा का बच्चा बना हूं, महसूस करें, और महसूस करके उसके लिए कठिन से कठिन अंदर से संकल्प दृढ़ता का लें, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, इसके लिए मैं तपस्या करूं, इस आदत को मिटाना है। क्यों किसी आत्मा को या खुद को परेशान करे आदत? ऐसी सूक्ष्म आदतें हैं जो अंदर की खुशी को गायब कर देती हैं, उमंग उत्साह को छीन लेती हैं, अपने उमंग उत्साह को तो करती हैं लेकिन दूसरी आत्माओं के भी उमंग उत्साह को खत्म कर देती हैं। इसलिए पुरानी आदतों का बोझ उड़ती कला में, डबल लाइट बनने में बहुत बड़ी रुकावट डालता है। चेक करो और बहुत सूक्ष्म जा करके चेक करके उसको समाप्त करना। इसके लिए बहुत लेजर किरणों वाला योग, बहुत पावरफुल योग चाहिए। जैसे आजकल ऑपरेशन, कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो लेजर किरणों से कर देते हैं, चीर फाड़ नहीं करते। ऐसे बाबा की वो शक्तिशाली करंट किरणें एकाग्रता के आधार से हम कैच करें, और ऐसी जो सूक्ष्म बनी हुई पुरानी संस्कारों की, पुरानी आदतों की अंदर अंदर जाल बनी हुई है, उसको हम समाप्त करें। आदतें कैसे बनते उसका विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूं। जैसा संग मिला है, जैसी पालना मिली है, जिसके साथ हम रहे हैं, उसी प्रकार की आदतें निर्माण हो गई। अब हम अलौकिक परिवार के हैं। दादी जानकी एक बहुत गहरी बात कहती हैं कभी कभी। एक बात कहती हैं कि आज तक भी कोई कहता है अगर कि इनके जो संस्कार हैं, इनके माँ बाप से जैसे मिले हुए हैं, पिछले जन्म के संस्कार या माँ बाप से मिले हुए हैं, कहती माँ बाप को छोड़े हुए तुमको 30 साल 40 साल हो गया, उनके साथ तुम 5-10 साल रहे और 40 साल से अलौकिक परिवार के साथ रह रहे हो, वो संस्कार अभी तक चल रहे हैं और 40 साल वाले संस्कार कहाँ गए। ये जो हमारा संग है, ये जो हमारा भोजन है, ये जो हमारी पालना है, क्या इससे संस्कार निर्मित नहीं हुए जो अभी तक वो पुराने संस्कार अपना काम करके जाते हैं। अगर हमारे संस्कारों में दिव्यता अलौकिकता आती जाए, इतनी ऊंची पालना, पढ़ाई, संग, ब्रह्मा भोजन, क्या नहीं मिल रहा है ब्राह्मण जीवन में, सबको मिल रहा है। शुद्ध अन्न खा रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, भगवान के महावाक्य पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमारे संस्कार अभी तक भी वो पिछले चलते आ रहे हैं। इसलिए उन पिछले संस्कारों को, पास्ट के संस्कारों को, उन स्वभावों को संकल्प की दृढ़ता के साथ तपस्या करके हमें परिवर्तन करना ही है, तब डबल लाइट बनेंगे, नहीं तो बोझ बनता रहेगा। चौथी बात है, बहुत सूक्ष्म देह विमान और उसके कारण काम वासना, कहीं न कहीं प्यूरिटी की कमी बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। हम कहते हैं हम तो पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी दैहिक अभिमान, देह अभिमान है, किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म में इम्प्यूरिटी की झलक है, व्यर्थ को भी बाबा इम्प्यूरिटी कहता है, जहां दुख दे रहे हैं, दुख ले रहे हैं, उसको भी इम्प्यूरिटी कहता है, क्योंकि जहां प्योरिटी है, पवित्रता है, वहां उसके बच्चे सुख और शांति साथ साथ हैं। अगर सुख शांति की यथार्थ अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, माना कुछ न कुछ प्योरिटी में कमी है, और वो प्योरिटी की कमी ही हमारे डबल लाइट बनने में विघ्न डाल रही है। इसलिए फरिश्ता बनने वाली, डबल लाइट स्टेज का अनुभव करने वाली आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहने की बहुत अच्छी मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा लाइट हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, अशरीरी बनने का अभ्यास फरिश्ता बना देगा। लेकिन इसके लिए फुल अटेंशन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं सवेरे सवेरे आधा घंटा योग कर लिया फिर सारा दिन भूल गए। बीच बीच में इस शरीर के पिंजरे से आत्मा अलग हो जाए। मैं आज किसी को 4 कंबाइंड स्वरूप बता रहा था, फोन आया था, हमने कहा आपके 4 कंबाइंड स्वरूप हैं, आप अकेले कहां हो, 4 कंबाइंड स्वरूप क्यों नहीं स्मृति में रखते हो, कौन है साहब 4 कंबाइंड स्वरूप टीचर्स? एक तो मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड हूं, आत्मा और शरीर अलग अलग है लेकिन इतना कंबाइंड है जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, काम भी नहीं हो सकता, इतना कंबाइंड हो गई, जुड़ गई, जुड़वा हो गए दोनों। कंबाइंड को तो फिर भी अलग किया जा सकता है, लेकिन ये कंबाइंड ऐसा है अलग हो जाए तो कोई काम का नहीं। लेकिन है अलग। अब उसका अनुभव करो, मैं अलग हूं ये अलग है, यू कम्बाइंड मैं आत्मा हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, इस शरीर से अलग हूं। अभ्यास करेंगे तो इस कम्बाइंड स्वरूप का बड़ा रस मिलेगा, ये शरीर अलग है, इसे कर्मेंद्रियों से मैं कर्म करा रही हूं, कभी भी कर्तापन का भान नहीं आएगा, करावन हार बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। तो एक कम्बाइंड स्वरूप ये याद रहता है, दूसरा कम्बाइंड स्वरूप बाबा मेरे साथ कम्बाइंड है, आत्मा के साथ परमात्मा कम्बाइंड है, आप और बाप कम्बाइंड हो जाओ, अकेले कहां है, बाबा को जहां बुलाओ जैसे बुलाओ उसको ले आने में देर लगती है क्या, लेकिन देर सच्ची चाहिए, कहता अगर तुम मुझे यहां बिठाना चाहते हो, कम्बाइंड रखना चाहते हो, तो इसमें किसी भी प्रकार का किचड़ा होगा, गंदगी होगी, तो मैं कैसे आऊंगा, बैठूंगा ही नहीं। अगर बाबा हमारे साथ कम्बाइंड हो जाए, सर्वशक्तिमान, तो क्या बड़ी बात है, कोई मुश्किल है, किस पहाड़ का अनुभव होगा, ऐसा बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात कहां उलझन है, करण करावन हार बाबा साथ है, सर्व शक्तियों से समर्थ जो है वो हमारे साथ रहता है, कोई होगी कमी कमजोरी ठीक कर देगा, कम्बाइंड स्वरूप की स्मृति अगर रहेगी तो डबल लाइट बन जाएंगे। तीसरा कम्बाइंड स्वरूप है ये ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, बार बार प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना इसकी, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, मुझे ही बनना है और कोई दूसरा थोड़ी बनेगा, और फरिश्ता स्थिति के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करो, बहुत सुंदर एक लाइट का आभा मंडल तैयार हो जाएगा शरीर के चारों तरफ, जितने शुद्ध पॉजिटिव सकारात्मक विचार हमारे चलते हैं उसकी क्वालिटी होने के कारण संख्या सीमित हो जाती है, जो नेगेटिव विचार होते हैं वो क्वांटिटी वाले हो जाते हैं, बहुत उनका विस्तार हो जाता, और जो बड़े अच्छे विचार होते हैं सीमित होते हैं, वो शुद्ध विचारों से एक आभा मंडल तैयार होता है, और ब्राह्मण सो फरिश्ता अलग नहीं है, कम्बाइंड है, अभी अभी साकार में है, ब्राह्मण स्वरूप में है, अभी अभी थोड़ा सा आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, फरिश्ता बन गए, ये तीसरा कम्बाइंड स्वरूप, इसका अभ्यास करना है। और चौथा बाबा कहता बच्चे तुम सब चतुर्भुज हो, भविष्य लक्ष्मी नारायण का कम्बाइंड स्वरूप नहीं याद करो, लेकिन संगम युग पर दोनों संस्कार हरेक के अंदर रहने चाहिए, कभी भी ये बहने नहीं कहे भाई होता तो ये काम हो जाता, भाई ये नहीं कहे बहन होती तो ये काम हो जाता, हमारे पास दोनों संस्कार हैं या नहीं है, कोई भी आत्मा चाहे मेल तन में है उसके पास भी फीमेल के अनुभव हैं, संस्कार हैं, किसी न किसी जन्म में तो उसने फीमेल का चोला लिया है ना, कई भाई जब कहते हैं ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं ये कहूं क्यों निर्भर करते हो किसी पर, क्यों डिपेंड होते हो किसी पर, सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर संस्कार है, अगर चाहे तो बाबा ने शुरू शुरू में दादियों को यही प्रैक्टिस कराई, सदा ध्यान रखो हम चतुर्भुज हैं, तो भाई थे ही नहीं थोड़े थे, अब काम सारे स्थूल थे, कभी मोटर गाड़ी खराब हो गई इसको पंचर बनाना है, कहां से भाई आएगा, बाहर तो जाना नहीं भट्टी में है, कभी बर्तन बड़े बड़े डिग रहे हैं, भाई होते तो साफ करते, बाबा पक्का करा दिया तुम सब चतुर्भुज हो, दो भुजाएं तुम्हारी हैं, दो भुजाएं भाई की हैं, करो ये काम, ये चारों कम्बाइंड स्वरूप संगम युग पर जिन आत्माओं ने स्मृति में रखा है वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करते, आधारित नहीं होते, फर्स्ट क्लास उनकी डबल लाइट स्टेज बन जाती है, प्रैक्टिस करके देखना। पांचवी बात, एक अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बोझ है, और वो है साक्षी दृष्टा स्टेज, कई ऐसे दृश्य हैं, कई ऐसी बातें हैं, सुनते हैं देखते हैं, प्रश्नात्मक बुद्धि बन जाती है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है, ये राइट है ये रांग है, ये नहीं होना चाहिए, कईयों की बुद्धि इतनी तीव्र गति से चलती है जो अपने आप को भी टेंशन में ले आते और दूसरों को भी सुना करके भारी कर देते। डबल लाइट स्टेज वाली आत्मा स्वयं के भी पार्ट को साक्षी होकर के देखे, दूसरी आत्माओं के साथ भी ऐसे चले, ये हीरो पार्टधारी अपना कैसा अच्छा पार्ट बजा रहा है, अगर नेगेटिव पार्ट वाली आत्माएं न हो तो सतयुग तो आज ही बन जाएगा, उनकी भी जरूरत है, थोड़े थोड़े होने चाहिए। क्यों हमारे प्रश्न उठे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बाबा जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है और वो मुस्कुरा रहा है, वो देख करके अपने प्रश्न उठाता, वो सब जब आता जब देखता कहता बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। फिर हम उन प्रश्नों में उलझ करके अपने माइंड को भारी कर लें, अपनी खुशी गायब कर दें, अपने चिंतन को बेकार कर लें, ऐसा ही होता है, हमने देखा है, यहां ऐसा होता, यहां ऐसा होता, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता। सचमुच अगर अपनी अच्छी स्थिति, डबल लाइट स्थिति बनानी है, जो करेगा वो पाएगा, मैं जो करूंगा मुझे देख सब करेंगे। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो मेरे से गलत प्रेरणाएं लोगों को मिले। साक्षी दृष्टा होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। कोई शरीर के हिसाब किताब आ जाते हैं, साक्षी होकर के मैं अलग होकर के इस हिसाब को चुकतू करूं। और कोई अगर नीचे ऊपर बातें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो वहां पर हर बात में क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझने की बजाय बहुत हल्की स्थिति से, अगर मैं बहुत शुभचिंतक हूं तो शुभचिंतक आत्मा की निशानी है शुभ भावना का दान देना, उन बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, इधर सुनाया उधर सुनाया वायुमंडल भारी कर दिया। न खुद लाइट रहेंगे न दूसरों को लाइट बनने देंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना, हम सबको बाबा फरिश्ता बनाना चाहता है, जितना न्यारे उतना प्यारे। पहले न्यारापन चाहिए फिर प्यारे बनूं, और न्यारापन है देह अभिमान से सबसे बड़ा। जो आत्मा इस देह भान से न्यारी रहती है उन्हें लिप्त होकर के सबका प्यार पाते। और बाबा बड़ी अच्छी प्यारे बनने की युक्ति सिखाता है, अगर तुम बीज को प्यार कर लो तो सारा वृक्ष तुम्हें प्यार करेगा। सच्चा प्यार एक बीज रूप बाबा से, कहां जाएगा वृक्ष अलग, बाबा के साथ ही सारा वृक्ष है, सारे परिवार का स्नेह मिलेगा। अगर सच्चा स्नेह मैंने बीज से किया है, शिव बाबा से किया है, तो डबल लाइट स्टेज बनाने के लिए ये पांच बातें सदा ध्यान पर रखना और तीन बातों से मुक्त रहना। एक तो कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ, बड़ी जल्दी फ्यूज उड़ जाता कईयों का, छोटी सी बात हो गई बस फ्यूज उड़ गया, खुशी गायब हो गई, नशा खत्म। जैसे लाइट का अगर बार बार फ्यूज उड़ता तो क्या कहते हैं, भाई कहीं लोड ज्यादा है, लोड कम करो तो लाइट फ्यूज नहीं उड़ेगा। हम भी कई बार कई प्रकार के लोड ले लेते हैं, फ्यूज उड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दो, कभी भी कंफ्यूजन ना आए, उलझन ना आए। जब बाबा बैठा है, हम क्यों अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं, क्यों हमारा फ्यूज उड़े, बहुत हल्के रहो, सब अच्छा होने वाला है। करण करावनहार बाबा है, सबको देख रहा है, सबके ऊपर उसकी नजर है, सबके ऊपर उसका कैमरा लगा है, बच के कोई नहीं जाएगा, गलत करेगा तो उसको हिसाब मिलेगा। मैं अपनी बुद्धि क्यों भारी करूं, क्यों लोड लेके कंफ्यूज हो जाऊं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो डबल लाइट नहीं बनोगे। कभी अपसेट नहीं होना, सेटिंग पर रहो, सीट पर सेट रहो। बाबा ने इतनी ऊंची सीट दी है, सामान की सीट दी है, उस पर बैठ जाओ। कोई कुछ भी कहे आपको, मान दे अपमान करे कुछ भी कहे, मुझे अपनी सीट नहीं छोड़नी। बाबा ने बहुत मान दिया मुझे, किसी का मान नहीं चाहिए। मैं तो आज तक किसी से सम्मान नहीं कराता, मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा सम्मान तुम रखो, बाबा मुझे बहुत दे रहा है। क्यों किसी के पीछे, मान सान के पीछे जाए, क्या मिलेगा हमको? और नहीं मिलेगा तो अपसेट हो जाएंगे। अगर ये इच्छा रखी मान की, शान की, कोई पद पोजीशन की और नहीं मिली तो क्या होगा, अपसेट। इसलिए अपनी सीट पर सेट रहो। बाबा ने बहुत ऊंची सीट दी है, अपने दिल का तख्त दिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए। हम दिल तख्त के मालिक हैं, और डबल ताज दिया है बाबा, जवाबदारी का भी ताज है, पवित्रता का भी ताज है, और आत्मिक स्वरूप का तिलक और विजय का तिलक। जिसके ऊपर डबल तिलक है, डबल ताज है, डबल तख्त है, वो आत्मा को दूसरे के मान सान की क्या जरूरत है। इसलिए अपसेट नहीं होना कभी भी, बहुत अच्छी मस्त स्थिति में रहो, सेट रहो और डिस्टर्ब नहीं होना। अपसेट अलग है, डिस्टर्बेंस अलग होती है। ये डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई छोड़ दिया, क्लास में आना छोड़ दिया, क्यों डिस्टर्ब हो गया भाई, क्या हुआ? क्लास में तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं तो तन से किया, मन से करता हूँ, धन से करता हूँ, इतना सहयोग दिया, मेरी यहाँ वैल्यू कोई नहीं है, मुझे तो कोई सीट पर भी आगे नहीं बिठाता, मेरे पीछे बिठाते, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो गए। हम सब बाबा के बच्चे, कभी भी कोई बातें डिस्टर्ब न करें, कभी भी अंदर की स्थिति अपसेट न हो, और कभी भी हमारे मन की स्थिति का उमंग उत्साह का फ्यूज खत्म न हो। आप देखो डबल लाइट बन करके फरिश्ता बन जाएंगे, उड़ेंगे। आज हम सभी आधा घंटे के लिए भी उड़ेंगे, ठीक है, उड़ सकते हैं ना, पंख हैं कि बादल रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे बादल आपको। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, 7 बजे तक हम योग करेंगे, बाद में मेरी ममता बहन आपको डील कराएंगी। नहीं आप भले बंद कर दो, सभी बहुत अलर्ट होकर के अपने भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को देखो और अनुभव करो। मैं एक लाइट और माइट से संपन्न एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैं अभी आपको लक्ष्य दे रहा हूँ, फिर कमेंट्री नहीं दे रहा हूँ, तो 15 मिनट इस अभ्यास को करना, फिर बीच में 3 बजेगी, उसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल अनुभव करो। आत्मा जैसे इस शरीर से डिटैच होकर के उस लाइट के शरीर में जा रही है, और उस लाइट के शरीर को लेकर के उड़ करके बाबा के पास वतन में गई है, और अव्यक्त वतन में बाबा उसी लाइट के रूप में आह्वान करें, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा की बहुत मीठी मुस्कुराती हुई वो सूरत मूरत देखो, अनुभव करो, बाबा के वरदानी हाथ का अनुभव करो, और बाबा के साथ वतन से फिर पूरे विश्व को सकास्त हो। जैसे मैं लाइट स्वरूप में फरिश्ता बन करके सर्व आत्माओं की आवाज सुन रहा हूं, चारों तरफ से पुकार है, अपने इष्ट के प्रति बहुत भावनाएं हैं, दुख अशांति से सब पुकार रहे हैं, और मुझ आत्मा को बाबा कह रहे हैं बच्चे सबको शांति की शक्ति की किरणें दो, सकाश दो। अपने लाइट के वतन से, लाइट के शरीर से, फरिश्ते रूप से हम चारों ओर अपनी सकाश शक्तियों की फैलाएंगे, अनुभव करेंगे जैसे बाबा ने बहुत ऊंची पहाड़ी पर, बहुत ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है, और चारों तरफ नीचे आत्माएं पुकार रही हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर के बच्चे सबको सुख की, पवित्रता की, प्यार की किरणें दो, और वो किरणें चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। तो सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए लाइट के स्वरूप को अनुभव करो। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का उरा, लाइट का आभा मंडल है, और उस लाइट के शरीर से मैं उड़ते हुए अपने लाइट के वतन में बाबा की बिल्कुल समीप फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। और बाबा इस विश्व कल्याण की सेवा मुझे आत्मा से करा रहे हैं। सभी उस लाइट के वतन से पार अखंड ज्योति में तत्व अपना मूल वतन जहां असीम शांति है, चारों ओर पवित्रता की शक्तियां विराजमान है, स्व प्रकाशित घर जहां ज्ञान सूर्य बाबा सदा निवास करते, हम सब सितारे जगमगाते हुए उस ज्ञान सूर्य के समीप बैठकर लाइट और माइट से संपन्न बीज की अवस्था में बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को समान बना रही हैं। इतनी सब आत्माएं अपने परम धाम घर में बाबा की किरणों के नीचे उनकी समीपता का अनुभव कर रही है। सर्वशक्तियों से संपन्न बनती जा रही है। उस अनुभव के सागर में समा जाओ। असीम शांति और शक्ति का अनुभव करो।
गहन योग की अनुभूति में मस्ती में बैठे हैं। जैसा भाई साहब से हमने समझा, हम सच में डबल लाइट बनकर वतन का अनुभव कर रहे थे। तो ऐसे सुंदर मार्गदर्शन के लिए हम सभी आदरणीय भ्राता जी को बहुत बहुत दिल से अंतःकरण से दुआओं भरा धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू।